ज्ञानं येन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यां प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं महिमानुकुश तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां चरणं। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, मुसलमानों के एक अल्लाह खुदा है, क्रिश्चियनिटी में भी एक गॉड है, एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, किंतु हमारे सनातन धर्म में बहुत से देव देवियां बहुत से भगवान हैं। ऐसा क्यों? भगवान का जो रूप नहीं मानते हैं वो भी, जो उनकी लीलाओं को नहीं मानते हैं, आकार को नहीं मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, जो नारायण को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, तरह तरह के इसमें मानने वाले हैं। इसलिए इसमें तरह तरह के देवता लोग हैं और भगवान भी अनेक प्रकार के हैं, और उन लोगों में वो लोग कहते हैं हम लोगों में केवल एक खुदा या एक अल्लाह है, एक गॉड है, दूसरे नहीं। ऐसा क्यों? न समझने के कारण। जरा सनातन धर्म नित्य है ना, सदातन, इसमें बड़ी उदारता है। यदि केवल एक ही क्लास रहे एमए पीएचडी तो लड़के कैसे योग्य बनेंगे? इसलिए प्रारंभिक जहां ज्ञान का विकास होता है, प्रारंभिक स्थिति से योग्यता के अनुसार में बहुत से क्लास होते हैं, उसमें तरह तरह के प्रश्न भी उठ सकते हैं, शंकाएं भी रखने का अवकाश है। यह सनातन धर्म में ही केवल है, और जब है या तो तलवार और ये ऑर्डर, कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। और हमारे यहाँ जीवों के अधिकार के अनुसार जो जो तामसिक गुण में है, राशि गुण में है, जो सत्व गुण में है, जो निर्गुण में स्थित है, जो आत्मा का रियलाइजेशन करने वाले हैं, प्रेम का कुछ विकास है, आराधना का कुछ स्तर है, उनके अनुसार में सबके लिए अधिकार के अनुसार में क्लास बनाया गया। और जगह में क्लास नहीं है, हमारे यहाँ जैसे है ना, जे यथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव
भजाम्यहम्
मम वर्त्मेषु, माने सभी जीव भगवान के आराधना में ही हैं, किंतु समझने का जरा फेर है, उनसे अलग कोई है नहीं। सभी हमसे संबंधित हैं, देवता लोग भी उन्हीं की विभूति हैं, उनकी तो बात छोड़ दो, प्रभु को एक तीन का समझ करके और प्रभु का ध्यान करो उस तिनके में, तो उस तिनके में भी वो है। मूर्ति की तो अलग बात रहे, एक तीन का भी, एक चीटी में भी भगवान है, एक सुअर में भी है। गीता में कहा गया ना, जो गाय में, सुअर में, कुत्ते में, गधे में और पंडित जो लोग हैं वो सब समदर्शी ना। ये केवल सनातन धर्म में ही संभव है, और कोई नहीं, किसी भी धर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें श्रेणियां हैं, विभाग हैं, इसमें प्रश्न और शंकाओं का भी स्थान है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, गीता से लेकर के भागवत, रामायण, पुराण, सब में पहले प्रश्न है, उसका उत्तर है। इस तरह से इसमें श्रेणियां हैं, और किसी भी धर्म में श्रेणी नहीं, इसलिए हम एक ईश्वर के ही उपासक हैं। उसके विविध प्रतीतियां हैं, प्रतीति समझते हैं ना, क्या प्रतीति का
विभिन्न प्रकार
प्रकाश उसके हैं, किंतु उसी का ही है। जीव उन्हीं से निकले हैं, भगवान के जितने अवतार उन्हीं से निकले हैं, देवता लोग भी उन्हीं की विभूतियां हैं, तीर्ण गोल मलता उन्हीं से ही संबंधित हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर वो नहीं है, इसलिए बहुत ऊंचा धर्म है सनातन, माने यही होता है। और सबका कोई निश्चित तिथि है, 1900 आज कितना है, 99 है ना, उसके पहले क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं था, नहीं था। हिजरी मुसलमानों का करीब करीब कितना हम, मुझे याद नहीं, 1400 कितना यह होगा, इसके पहले नहीं था,
1200
कितना। और हमारा सनातन अंकों में नहीं दिया जा सकता, जब से भगवान है, जब से जीव है, तभी से ही है नित्य सनातन। इसलिए आप लोगों को गौरव होना चाहिए, हम भारतवासी हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इसका गर्व रखेंगे। किसी जाति, कोई भी जाति पुरानी नहीं है, कोई नहीं कह सकता जी हमारे फोर फादर का नाम क्या है, किंतु हम कह सकते हैं हम कश्यप गोत्र के हैं, हम इस गोत्र के हैं, सांडिल्य गोत्र के हैं, हम कह सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इसका गौरव होना चाहिए, सिर से ऊंचा उठा करके कहेंगे। ऐसी हमारी संस्कृति विश्व में कहीं भी पुरानी नहीं है, क्योंकि ये सनातन है। जीवात्मा अमर है, भगवान अजर अमर है, उन दोनों का रिलेशन जो संबंध है, इसी को कहते हैं धर्म, यही प्रेम है, ये भी नित्य है। जरा प्रेम जगत में पछड़े में पड़ करके, अभी स्वार्थ के वजह से अभी कुछ गड़बड़ हो गया है। इसी चीज को जगाने के लिए इस संसार में स्त्री और पुरुष का प्रेम है, माता पिता का पुत्र के साथ में स्नेह है, ये सब चीजें नहीं रहती तो हम उसको, उसके प्रति प्रेम नहीं डाइवर्ट कर सकते थे। ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ एटर्नल वर्ल्ड है, उसकी छाया है। एक शिक्षा का आगार है। यदि किसी का प्रेम सूख जाए तो क्या होगा, उसका जीवन ही बेकार चला जाए। जिसको स्त्री और पति में परस्पर प्रेम है, पुत्रों में स्नेह रखता है, भले ही अभी वो विकृत है, तो भी इसी को अवलंबन करके, इसी को हम भगवान के चरणों में देकर के विशुद्ध प्रेम लाभ कर सकते हैं। चैतन्य चैतामृत में ऐसा कहा गया, विषय ते आछे एबे प्रीति ये अमार से मत प्रीति हो उचार। बिल मंगल को वेश्या के प्रति अत्यंत आसक्ति थी, किंतु जब उसने ठोकर मारा थोड़ा सा, इस रक्त और हाड़ चाम पैखाना भरे हुए टट्टी भरे हुए शरीर में तुमको इतना प्यार है, तुमको लज्जा नहीं चाहिए, क्यों नहीं उस भगवान के साथ में प्रेम करता है। बस एक धक्के में वो ठीक हो गया, सारा प्रेम उसका स्नेह जो कुछ था सब एकत्र करके भगवान के चरण में डाल दिया। यदि वो प्रेमी नहीं रहता तो क्या देता। इसलिए भगवान ने इसको ऐसे ही बनाया है कि इसी को अवलंबन करके हम भगवान के साथ में भगवान को हम अपना पुत्र बना सकते हैं, इसी को वात्सल्य भाव कहते हैं। कोई कोई उनको अपना मित्र भी बना सकता है, जगत में मित्र हैं, ऐसे भगवान को अपना मित्र बनाओ, कोई को अपना स्वामी बना लो, जैसे हनुमान जी राम को अपना स्वामी बना लेते हैं, दिन रात राम राम में रमे रहते हैं, उनको राम की सेवा के अतिरिक्त और कोई चीज की लालसा ही नहीं। इसी तरह से कोई उनको अपना पति बना सकता है, जैसे रुक्मिणी ने उनको अपना पति बनाया, सीता जी ने राम को अपना पति बनाया। प्रेम का प्रेम के ध्वंस होने का कारण, टूटने का कारण उपस्थित होने पर जो प्रेम टूटता नहीं बढ़ता है वही प्रेम है, और जो प्रेम ऐसा दिखता है किंतु कोई झटके लगने पर टूट जाता है वो विषय है, भोग है, वो प्रेम नहीं है। सीता जी से राम का संबंध टूटने के बहुत से अवसर आए, राम ने सीता जी को बाहर कर दिया, प्रेम टूटा नहीं, टूट ही नहीं सकता। कृष्ण मथुरा चले आए वृंदावन से और चले गए फिर द्वारका, उन्होंने 16,000 एक नहीं 16,000 रानियों के साथ में विवाह कर लिया, किंतु ब्रज का प्रेम टूटा। उन्होंने यह भी कह दिया कि भैया मैं तो वसुदेव और देवकी का पुत्र हूं, गोप कहना भी छोड़ दिया। क्या प्रेम टूट गया? प्रेम इतने ऊपर शिखर पर था कि उद्धव जैसे प्रेमी भक्त भी आश्चर्यचकित हो गए उनका प्रेम देखकर। इसी तरह से हमारा भी उनका संबंध है, कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि हम उनके पार्ट और पार्सल हैं। अभी वो टूट गया है, जैसा टूप नहीं दब गया है, छिप गया है इस भौतिक शरीर में भौतिक कामनाओं वासनाओं के द्वारा, और वह जिसको स्त्री से प्रेम नहीं है, पुत्रों से प्रेम नहीं है, अंततः तो वो कुत्ते से प्रेम करता है, बिना प्रेम का रह नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, नहीं होगा तो अपने जुल्फों से प्यार करेगा, किसी न किसी जरूर में वो उसका प्रेम मान ही नहीं सकता, उसके अंदर में प्रेम है। यही प्रेम शुद्ध हो करके भगवान के चरणों में लगने पर इसी का नाम भक्ति हो जाता है। इसके संबंध में मैं श्रीमद्भागवत इत्यादियों से श्लोक तो नहीं बतला रहा, किंतु श्लोक ऐसा ही समझिए, बहुत सी शिक्षाएं में प्रभु एक काम करते हैं और उसमें हजारों शिक्षाएं भरी रहती हैं, उसमें गंभीर रहस्य होते हैं। कृष्ण ने कहा कि तुम गोपियों को अपने पतियों को छोड़कर के यहां पर कैसी चली आई, पति की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। पति अंधा लंगड़ा लूढ़ा जैसा भी हो, स्त्री को उसे छोड़ना महापाप है, इस जगत में भी उस जगत में भी। इसलिए घर में लौट जाओ तुम लोग, रात है, यहां पर अघोर जीव जंतु इत्यादि हैं और रात भी बड़ी गंभीर है, अंधेरी रात है, लौट जाओ। और जब कृष्ण उनसे पीछे मिले तो कृष्ण ने कहा जी मैंने कब कहा जी लौट जाओ, अघोर रात्रि नौ घोर रात्रि, मैंने तो ये कहा जी पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, मैंने ये कब कहा, और उसमें लगा दो घोर नहीं बल्कि पहले का और उसमें पिछले में लगा दो अघोर रूपा, घोर रूपा नहीं, अरे उस दिन तो पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, भला उस दिन रात कहां से आएगी, अघोर सत्व निमित्त, घोर सत्व नहीं और पति जात नहीं, अप्रति जात, जात नहीं, जाओ मत, अरे मुझसे बढ़कर के तुम्हारा प्रियतम पति कौन हो सकता है, मैं ही पति का पति का पति का परम पति का पर पति मैं हूं। तो मैंने कब कहा, तो गोपियां मुस्कुराने लगी, सबके बड़े गंभीर अर्थ हैं। बिना गुरु के जो शुद्ध ऐसा भजन करने वाला न हो, शास्त्रों का गंभीर अर्थ अपने गुरु से नहीं सुना हो, अनुसुड़ियात पहले सुने, मनन करे, विचार करे, साधन करे, तब उसको समझ सकता है शास्त्रों के अर्थ को। लिखा है मान लीजिए राम तुम कहां जाते हो, राम कहां जाते हो, राम कहां गए थे, ये पूछा, एक शब्द है, सेंटेंस है। यदि पूछा राम तुम कहां गया था तो वो कहेगा जैसे मैं यहां गया था, सरल सहज रूप में। मैं यदि कहूं राम तुम कहां गया था तो इसका अर्थ क्या होगा, मैं स्थान नहीं पूछना चाहता, तुम क्यों गए, राम तुम कहां गया था, इसका अर्थ क्या होगा, मैं जानता हूं तुमको नहीं जाना चाहिए, तुम गलत रास्ते पर गए। स्टोन में छिपा है अर्थ, शब्दों में जो क्या इसका अर्थ है, जो कहने वाला वक्ता का, गीता का, भागवत का, रामायण का, पुराण का, ये गुरु परंपरा की धारा से जाना जा सकता है। अपने पढ़ेंगे आप अपने मन के भाव को लगा करके उसका अर्थ निकालेंगे, वैसा नहीं। इसलिए गुरु परंपरा की धारा से ये जाना जा सकता है। कोई लाख विद्वान हो, लाख विद्वान हो, वो क्या समझेगा, यदि ये गीता का अर्थ समझना है तो अर्जुन से समझो, अर्जुन ने जिसको समझाया उससे समझो, व्यास और सुखदेव से समझो, उनकी परंपरा में जो उनसे सीखे हैं उनसे सीखो, तब तो परंपरा की धारा में वही समझेगा जो कि कृष्ण का आशय था कहने का, नहीं तो नहीं समझ सकते। पहले कृष्ण पहले ही कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि आप हमारे गुरु सर्वस्व हैं, मैंने आत्मनिर्धन आपके चरणों, जो कुछ कहेंगे मैं पीना आना खाने का सब मैं ग्रहण करूंगा, करिष्ये तव वचनम, वचनम तव, तुम्हारी वचन, आप भगवान हैं, मान लिया। ऐसे गीता का समझना है तो पहले इस रूप में मान करके तब गीता में आगे बढ़िए, और नहीं तो अपने मनमानी अर्थ करेंगे कि इस शब्द का अर्थ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं होगा। इसलिए गुरु परंपरा की धारा से उसे समझना, कहे तो ये दकियानुदेशी, अर्थात ये तो एक भाव का, एक तरह का, ये तो गोड़ामी है, गोड़ामी मैंने एक गुएमी बंगला में, और तुम्हें अंधविश्वास, एक ही बांधता है और दूसरा किसी की बात ही नहीं सुनता, ऐसा समझेगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं, बहुत उदार वृत्ति लेकर के चलते हैं। एक समय की बात है, श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं, इसके अगला प्रसंग, शंकर जी रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए चले। बात त्रेताजु की, कौन सा त्रेताजु?
त्रेताजु में रामचंद्र जी आए थे,
आए थे। इसके पहले वाला ठीक से त्रेताजु नहीं, उसमें नहीं आए थे, उसमें ये सब विचार बहुत है। खैर आप समझ लीजिए, त्रेताजु में रामचंद्र जी पिताजी का बात मानने के लिए, आदेश पालन करने के लिए वहां पर आए हैं। कौन से वन में?
दंडकारण्य
में। सीता जी का अपहरण हो चुका है, लक्ष्मण और राम, राम हासिते हासिते पिलाप करते हुए बड़े दुखी हो रहे हैं। ऐसे हो गए कि पेड़ों से पूछ रहे हैं, सीता जी तुम्हारी बड़ी प्यारी थी, जरा बतला सकते हो जी वो कहाँ गई? नदी से पूछती हैं, अरे तुम्हारे घाट पर आई थी, तुम्हारी तो बड़ी सहेली थी, तुम बतला सकते हो किधर गई? पेड़ों से, पौधों से, सबसे पूछ रहे, हिरणों से पूछ रहे, पागल जैसे हो गए। और ठीक उसी समय शंकर जी सती जी को लेकर, सती जानते हैं ना, शंकर जी की पत्नी, प्रजापति दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी, परम सुंदरी, रूपवती, गुणवती, सब विषय में वो सती जी, उनको लेकर के आए दर्शन करने के लिए। देखा जराम विरह में आतुर होकर के, हासिते हासिते कहकर के पागल हो रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धारा, और लक्ष्मण जी सिर नीचे किए हुए राम की रक्षा करते हुए और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जब निकट में आए तो शंकर जी ने मनी मन में बहुत स्तुति की और सोचा जी इनका, इनकी लीला में कोई व्याघात न आए, इसलिए दूर से ही छिपे रहकर उनकी दूर से परिक्रमा की और परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। और स्तुति करके जब लौटने लगे तो सती जी ने कहा, आपने किसको प्रणाम किया? आप तो मेरे गुरु हैं परम तत्व के, और हमारे पति भी हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शंकर जी गुरु होते हुए उनके पति कैसे बन गए? अरे भाई, पति परमार्थ की चीज है और पतित्व गुरु और पतित्व है ये संसार की चीज, वो परमार्थिक चीज है, आत्मा से उसका संबंध है, इसलिए कोई भी हर्ज नहीं। पति पत्नी का भी गुरु हो सकता है परमार्थ के लिए, इसमें कोई भी हर्ज नहीं। तो सती जी ने पूछा, प्रियतम आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? आप देख रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में हासिते हासिते कह करके पागल हो रहा है ऐसा कामी पुरुष। आप इस कामी पुरुष को, जो कि ये नहीं जानता है जिसकी पत्नी को कौन लेगा, कहाँ गए, ये इतना अंतर्जामी भी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, और आप इससे प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? हमने सुना है ये राम एक परब्रह्म है, समस्त विश्व के भरण पोषण करने वाले, सर्वांतर्ध्यामी और विश्व का पलक में भी ध्वंस करने वाले, सृष्टि करने वाले एक राम प्रभु हैं, और एक ये दशरथ पुत्र राम है, ये तो मैं जानता हूँ कि सीता कहाँ है, ये तो मैं ही जानती हूँ, और ये जानता नहीं और विलाप कर रहा है कामी पुरुष की भांति, इसको कुछ पता नहीं, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं उसी पर ब्रह्म जो राम है उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूँ, वो हमारे आराध्य हैं, यही हमारे आराध्य हैं, तुम इस पर विश्वास करो। उनके मन में नहीं भाया, उन्होंने कहा मैं नहीं समझ रही, तो तुम ऐसी बात करो, नहीं समझ में आता तो परीक्षा जरा कर लो, बात क्या है, मैं थोड़ा सा भी चलता हूँ, वहीं पर पास में पेड़ है, और तुम परीक्षा करके आ जाओ। कहा जी क्या परीक्षा करूँगी, फिर भी रह गई पीछे। और शंकर जी ने सोचा, होई है सोई, जो राम रचि राखा, वही होगा जो राम ने करके रखा है। कूक और तर्क बढ़ा वहीं साखा। अब जब इसका ऐसा ही दुर्भाग्य है तो जो होना होगा सो प्रभु की इच्छा होगी, अब उसी पर निर्भर रह जाए। क्या होगा नहीं होगा मैं उसके लिए घबराऊं, कुछ लाभ नहीं। गुरु को अपने शिष्यों के लिए बहुत चिंता होती है, कहीं हमारा शिष्य विपत में न जाए। जो अधकचरे होते हैं, जो ठीक अभी गुरु नहीं होते, उनके लिए तो बहुत बड़ा भारी प्रॉब्लम हो जाता है, किंतु शुद्ध गुरु को इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसा का। ठीक है, प्रभु की इच्छा में इच्छा मिला करके ही हमको चलना है। सती जी ने सोचा मैं क्या परीक्षा करूं। ठीक है, ये यदि कामी पुरुष है तो मैं सीता का रूप यदि धारण कर लूं तो हमें देख करके हास्यते हास्यते कह करके हमारा आलिंगन कर लेगा, दौड़ेगा, नहीं समझ सके। और यदि सचमुच में पर ब्रह्म है तो वो जान जाएंगे हमें। तो ठीक है, मैं सीता का रूप बनाऊं। और एक मिनट के अंदर में उन्होंने सीता जी का जैसा ठीक रूप बनाया। बनाते ही रामचंद्र जी के सामने का, वो तो हासिते हासिते वृक्षों से इधर उधर कर करके कह रहे, और वो ठीक जिधर राम आ रहे हैं ठीक उसी तरफ में जा रहे हैं जैसे ये राम की नजर हमारे पर ऊपर में पड़े, तब देखें क्या करता। और राम उनको देख करके भी नहीं देखते हैं, फिर इधर से इधर चले जाते हैं और फिर उधर से वो घूम करके उनके सामने आती। दो चार बात करने के बाद में जब निकट में आई तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ये प्रभु हमारे कहाँ गए, अकेले आप कहाँ आप घूम रही हैं? सती जी आप क्यों यहाँ पर अकेली क्यों? और शंकर जी कहाँ गए? सुनते ही बस अजी ये कैसे जान लिया, ऐसा तो परम ब्रह्म है। अब तो ये देखते हैं कि ये होश आवास पूरा है और न रो रहा है न कुछ कर रहा, और ये कैसे जान लिया? इतने में जबकि उनको होश हुआ तो फिर उन्होंने प्रणाम किया राम को। प्रणाम करते हैं, आंख खुला तो देखा जिसे जिधर देख रहे हैं उधर सीता राम, सीता राम, सीता राम, सब सिया राम मैं सब जगह चारों तरफ में देखा। इधर देखे सिया, उधर देखे सिया, उधर देखे सिया राम, उधर देखे। अब तो बड़ी बस एकदम गिर करके अब उनका सारी उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई। सबके अंदर में सीताराम है किंतु सभी राम नहीं, सीताराम नहीं है, यह बात गलत है। सियाराम में सब जग जानी, इसका अर्थ नहीं है कि सभी सियाराम हो गए। हनुमान जी यदि देखते रावण को भी तो सियाराम यदि देखते तो उसे को मारने की जरूरत क्या थी? कुंभकर्ण को मारने की जरूरत क्या थी? मेघनाथ को क्यों मारा यदि वो भी सियाराम है तो? हाँ उसके अंदर में सियाराम है किंतु वो समझ नहीं पाता, इसलिए भक्तों की दृष्टि बहुत ऊपर होती है। सियाराम में मैंने ऐसी कोई भी स्थिति कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसके देखने से भक्तों को सियाराम की उद्दीपना नहीं होती। जलमय हो गया, बाढ़ाई जलमय हो गया। क्या सब प्राणी जीव जंतु मनुष्य सब पानी बन गए? पानी की अधिकता का नाम है जलमय होना। उसी तरह से सियाराममय कृष्णमय का तात्पर्य है भक्त जहां देखता है उसमें सियाराम की उत्पत्ति, राधा कृष्ण की स्मृति होती है, उद्दीपना होती है। उनके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं है कुछ उनके संबंध के बिना, सब जगह सर्वत्र सब में देखता है। देख करके सती जी तो एकदम दंडवत प्रणाम किया और उठा तो देखा क्या, हासिते हासिते। अब सीता उनके तरफ में नहीं देख रहे और पेड़ पौधों से पूछते हुए अब चले जा रहे। इनका तो जो शंका थी वो दूर हो गई, अब लजाती हुई और कुछ शंकर जी के तरफ में चले। जब निकट में आए तो शंकर जी ने पूछा, क्या परीक्षा दिया? एक तो गुरु के वचन में विश्वास पहले नहीं हुआ है? तुम समझते हो नहीं समझते हो? गुरु का आदेश या विचारणीय? गुरु का आदेश मान लो, यदि गुरु ऐसा है तो उस पर विचार मत करो, कैसे ये ठीक है पीछे समझो, उनकी कृपा से उनसे पूछो, किंतु उनके वचनों में विश्वास रखो कि हाँ ये बात ठीक है। तो पहला तो उन्होंने हुआ जो अपने गुरु के वचनों में शंका की, संदेहात्मा विनश्यति, जिनको संदेह होता है गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में, भगवान के वचनों में, गीता के वचनों में, रामायण के पुराणों के वचनों में, उनका विनाश होता, विनाश माने परमात्मा से गिर जाते हैं। इसलिए पहला तो उन्होंने किया ये अवज्ञा की गुरु की। दूसरी बात उन्होंने पूछा, सच सच बतला देती, परीक्षा किया? कह देती हाँ जी हमने परीक्षा की, तो कोई बात नहीं होती। किंतु उन्होंने छिपाया, उन्होंने कहा जी हे नाथ आप मेरे गुरु हैं, मैं क्या उनकी परीक्षा लूं। उन्होंने ध्यान लगाया, विलंब किस लिए हुआ? अरे ये तो मेरी आराध्या सीता देवी का रूप धारण किया, अब तो मेरी माँ बन गई, आराध्या देवी बन गई है, अब स्त्री का संपर्क नहीं रहा, अब बाएं की तरफ में उनको स्थान नहीं रहेगा, माँ का जैसा सम्मान देते हैं, अब इनसे स्त्री का संबंध नहीं रहा और माता का आराध्य और आराधक का संबंध हो गया, उस देह को जिसने सीता बना लिया, अब कैसे स्त्री हम बना सकते हैं? इसलिए मन ही मन में संकल्प किया, आज से ये मेरी आराध्या के रूप में रहेंगी, मैं इनको स्त्री के रूप में ग्रहण नहीं करूंगा। इतने में आकाशवाणी हुई कि आपका संकल्प साधु ऐसा, आपके अतिरिक्त तो कोई ऐसा संकल्प कर नहीं सकता। फूलों की वर्षा हुई। सती जी ने कहा ये क्या हुआ, आपका संकल्प साधु है, पवित्र है, आपका संकल्प क्या है, मैं जाननी चाहती हूं। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बस राम राम स्मरण करते हुए उनको लेकर के अपने कुटी में लौटे, और कुटी में लौट करके उनको आज बाएं तरफ में स्थान नहीं दे करके सामने स्थान दिया, आसन दिया, खुद बैठिए पधारिए। अब इनको ये डर हुआ, ओहो ये तो पत्नी के रूप में अब ग्रहण नहीं कर रहे, ये तो बड़ा भारी मुश्किल हुआ, और इनके संकल्प को कोई बदल नहीं सकता। बड़ी चिंता उनको हुई, और इसी समय में कुछ दिन ऐसे गए। इतने में एक दिन क्या हुआ, भगवान की इच्छा से दक्ष प्रजापति एक सभा में बैठा था, वहां पर बहुत सारे देवता लोग भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, शंकर जी भी बैठे थे, और उसमें दक्ष प्रजापति गया। ब्रह्मा जी को उसने प्रणाम किया पिता के रूप में, और बाकी जितने भी देवता थे शंकर को छोड़ करके बाकी सब लोगों ने उठ करके उसका अभिवादन किया। शंकर जी चुपचाप बैठे रहे। उसने कहा ये बंदर का जैसा व्यक्ति, मैंने अपनी बेटी का विवाह से दिया, ये हमारा बेटा लगता है, और बेटा होकर के भी मैं यहाँ आया, सब देखा जी सब लोग उठ करके स्वागत किया, और ये बंदर की तरफ में सदाचार विहीन ये ढीठ बैठा रहा, और दो चार जैसे बच्चों को सुनाते हैं वैसे अच्छी तरह से उनको शंकर जी को सुना दिया। ज्ञान नहीं है, कपाल को कोई साथ न रहता है, श्मशान भूमि में रहता है, भूत पिशाच के साथ में रहता, कोई ज्ञान नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आचार नहीं, बहुत बड़ी भारी हमने गलती की, वो भी नारद के कहने से अपनी बेटी का विवाह उससे दिया, नैन में कभी नहीं देता, अब मैं पछता रहा हूं। शंकर जी सब समय भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते हैं साक्षात रूप में, इसलिए उनको किसी को स्वागत करने की जरूरत नहीं होती, जगत उनका स्वागत करे, सब समय भगवत भाव में लीन होने से भगवत स्वरूप ही है, भगवान से अभिन्न माने गए हैं, इसलिए ब्रह्मा इत्यादि भी उनका सम्मान करते हैं। और लोगों की तो बात क्या, प्रजापति इस चीज को नहीं समझ सका, उसने समझा जैसे ये शिव अघोरी है, हमारा बेटा के समान है, इसको उठ करके हमारा स्वागत करना चाहिए, किंतु नहीं जानता है ये सब समय जो भगवान को प्रणाम करने वाले हैं उनको किसी को भी प्रणाम करने की जरूरत नहीं, वो किसी का भी ऋणी नहीं है, नैम ऋणी चराजन, जो भगवान का शरणागत हो जाता है वो विश्व का किसी का भी देवता का माता पिता का किसी का भी ऋणी नहीं है, वो सबसे ऋण से मुक्त हो जाता है। नहीं समझाइए, और उठ करके दबदबी पायों से अहंकार से भरा हुआ वो चला गया उपेक्षा करके उस सभा को और शंकर जी को। वहीं पर कुछ भृगु में और उनके गणों में कुछ वाद विवाद हुआ। इसके बाद में यज्ञ का इसके बाद में तो चले गया फिर, और वैसे ही अपने मन में शत्रुता रखा, शंकर जी को कुछ ही नहीं, उनको न द्वेष है किसी से न ईर्ष्या है। साधारण आदमी नहीं समझ रहा था, वो समझता है कि वो हमारा शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं। शंकर जी को वैष्णवों का ऐसा कभी नहीं होता। एक तरफा युधिष्ठिर जी को दुर्योधन इत्यादि समझेंगे कि वो हमारे शत्रु हैं, किंतु ये अजात शत्रु हैं, इनका कोई भी शत्रु किसी को नहीं समझते हैं। कृष्ण का भी वैसा ही समझिए, जो भक्तों का ही ऐसा है। इसलिए शंकर जी के मन में तनिक भी कुछ नहीं आया द्वेष, किंतु वो द्वेष मानता रहा। उसने शंकर जी को अपमान करने के लिए, नीचा दिखलाने के लिए बड़ा भारी यज्ञ किया, उसमें सारे देवताओं को निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी को नहीं। सारे देवता लोग जा रहे हैं, इनकी बहनें भी 27 या कितनी थी सती जी की, वो सारी बहनें अपने पतियों के साथ में वहां पर गई उसके पिताजी के यहाँ, किंतु इसको इनके लिए निमंत्रण नहीं आया, शंकर जी के लिए भी नहीं आया, इस बेटी के लिए छोटी के लिए भी नहीं आया। सबको जाते हुए देख करके ये शंकर जी के पास में गई, आपका आदेश हो तो मैं वहां पर जाऊं अपने पिता के यहाँ यज्ञ देखने के लिए। शंकर जी ने बड़े प्रेम से समझाया, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मामा के यहाँ बिना निमंत्रण में जाने में कोई भी असुविधा नहीं है, अपने पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मामा भी पिता ही लगता है, बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, तुम जा सकती हो, किंतु एक बात है, वो हमसे विरोध मानता है, इसलिए विरोध मानने पर वहां जाएगी हमारा अपमान करेगा, तुम सह नहीं सकेगी, बड़ा अशुभ हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा जाना अच्छा नहीं है, मैं नहीं अच्छा। किंतु उनके मन में ये था, शंकर जी ने हमें पत्नी के रूप में त्याग दिया है तो इस शरीर को रखने से ही लाभ क्या है। मूल ग्लानी यहां पर थी, ये ग्लानी की ये बात नहीं थी, उसने सोचा जो अपने पिता के यहां जाएंगे, अपनी बहनों से, अपनी मैया से मीठी मीठी बात करेंगे, और यदि हमारे शंकर जी का अपमान हुआ तो ये शरीर को छोड़ना है, वहीं पर छोड़ दूंगी। इसलिए ऐसा सोच करके उन्होंने कहा जी हमको तो जाना ही है, आदेश दें और न दें, बस क्रोध से भरी हुई पृथ्वी पर धमक देती हुई पैरों से और चल पड़ी। शंकर जी ने देखा जैसे जो होनी है वही होना है, उन्होंने अपने सवारी जो नंदी का है बैल को भेज दिया और अपने कुछ अनुगामियों को भी भेज दिया, उनको उस पर बैठा करके और उस यज्ञ भूमि में ले गए। वो जब वहां पर पहुंची यज्ञशाला में, पिता ने मुख फेर दिया, आदर नहीं किया, जिसको इतना प्यार करता था आज उसके तरफ में बातचीत नहीं की। उनके बहनों ने डर के मारे इसे बातचीत नहीं किया, ये पिताजी बिगड़ जाएंगे। केवल मैया आई और दो एक बहनें आई, थोड़ी सी वार्तालाप उससे की, इसका मन और भी व्याकुल हो गया। यज्ञशाला में गई, देखा ये सबके लिए स्थान है, हमारे पति के लिए स्थान नहीं। अच्छा, पति के लिए स्थान नहीं है, इतना अनादर, इस दुष्ट के साथ संबंध जो हमारा शरीर है वो सब शरीर को नहीं रखना है। भगवान का शत्रु, शंकर जी का शत्रु, और उससे हमारा ये शरीर उत्पन्न हुआ, इस शरीर को मैं कभी नहीं धारण कर सकती। बस वहीं पर बैठ गई और बैठने के बाद में जुगासन पर बैठी और साथ ही साथ उसमें अपने आप अग्नि पैदा हुई और उस अग्नि से आग लग गई। शंकर के दूतों ने देखा और यज्ञ को भी विध्वंस कर दिया। ऋषि मुनियों के भी दांत तोड़ दिए, भृगु के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी का दांत तोड़ दिया, उषा का और कुछ कुछ किया, यज्ञ ध्वंस हो गया और अंत में उस प्रजापति का सिर भी काट दिया और उस आग में स्वाहा कर दिया, जला दिया। फिर तो चारों तरफ में बड़ी धूम मच गई। फिर ब्रह्मा जी को पता लगा, ब्रह्मा जी आए, विष्णु को आराधना करके बुलाया, विष्णु भी आए, सब मिल करके उसमें शंकर जी के पास में गए। शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं, एकदम निर्विकल्प समाधि में, प्रतीक्षा की बहुत दिनों तक, आराधना की। तो फिर समाधि जब भंग हुई तो दोनों ने प्रार्थना की, विष्णु तो विष्णु की बात सुनते हैं, उनका सारा क्रोध तो पहले ही शांत है, कभी उनको क्रोध नहीं, कभी और शांत हो गए, आपका क्या, आपकी क्या सेवा कर। तो उन्होंने कहा है जो अब एक बात करें, ये सती जी अब आप समाधि में हजारों वर्ष थे, अब वो हिमाचल के यहाँ कन्या होकर के पार्वती रूप में, हम लोग की इच्छा है आप ग्रहण करें और दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था वो आप पूरा कर दें। अच्छी बात है, तो ठीक है, पहले दक्ष का जो यज्ञ है पूरा किया जाए। सारे समस्त सभा समान ठीक किए गए और खुद शंकर जी वहां आए। सिर तो है नहीं, वो कैसे पूरा करेगा? उन्होंने कहा जो कोई सामने मिल जाए उसी का हाँ सिर काट करके ले आओ और उसी के ऊपर हम जोड़ देंगे। एक बकरा जा रहा था, बकरा माने गोट, मेल गोट जा रहा था, हाँ सी गोट नहीं, सी गोट जा रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, सिंह थे, शरीर से दुर्गंध आ रहा और उसको देखा गया, किसी ने उसका सिर काट लिया और लेकर के इनको दिया और लेकर के शंकर जी ने उसके ऊपर में रख दिए और रख करके मंत्र पढ़ा और बस साथ ही साथ में जीवित होता और अब तो साष्टांग प्रणाम करके स्तव स्तुति शंकर जी का करने लगा। क्यों ऐसा किया? जो लोग मनुष्य हैं भगवान का भजन नहीं करते, भक्तों का आदर नहीं करते, जिनके अंदर में भक्ति नहीं है, वो मनुष्य का शरीर होने पर भी बकरा है, इसलिए उसमें कोई भी अंतर नहीं, बहुत कामी होता है, क्रोधी होता है। इसलिए जो भगवान का भजन नहीं करते, गुरु वैष्णव का आदर नहीं करते, हरि कथा नहीं सुनते, तो उनकी क्या दुर्गति होती है? मनुष्य होने पर भी वो पशुओं में सबसे गए बीते हैं, गधे कह लीजिए या ये बकरे कह लीजिए। अब उसका अभिमान जो सारा था ये दूर हो गया, अभिमान दूर होने से अब उसका हृदय निर्मल हो गया और उनके चरणों में गिर करके रोते 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 प्रार्थना करने लगा, आप हमें क्षमा कर दीजिए। इसी प्रकार से ये दंड देना उसके लिए परम मंगल हुआ। यहां पर बहुत सी चीजें शिक्षा की है। पहली बात, गुरु में यदि सदगुरु है, पहले गुरु देख करके करो, जहां तहां सिर मत नवाओ, देखो जिसे तत्विक है हमारा कल्याण कर सकता है तब गुरु करो। यदि किसी प्रकार से वो गुरु कर लिया और अब सत्संग के द्वारा हमें कुछ बुद्धि हुई ये इस गुरु से हमें भगवत प्रेम नहीं होगा, परमात्मा में नहीं बढ़ सकते हैं, ये भगवत विरोधी भी है, भक्तों का विरोधी है, भक्ति नहीं करता है, तत्क्षणात उसे छोड़ दो उसे, एक सेकंड मत देरी लगाओ, और शुद्ध ऐसा गुरु करो जिसको भक्ति है, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसे संसार से परम विरक्त हैं, ऐसे गुरु को तत्क्षणात वैष्णव गुरु को करो। और वैष्णव मुखोद्गीर्ण पूतम हरि कथामृतम श्रवण नैम कर पत्तव्यम सर्पोथ, जो वैष्णव नहीं है उसके यहां से मंत्र डालो। पुनः ऐसे योग्य अधिकारी जो वैष्णव हो उनसे फिर से उसे दीक्षा ली। यदि तुमने मान लिया गुरु किया किंतु देखते हो कि ठीक है विरोधी नहीं है भगवत, तत्व ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, हमें परमात्मा में नहीं ले जा सकते, तो क्या करो, उनको आदर देते हुए उनसे उच्च कोटि के किसी महात्मा से जाकर के पुनः सत्संग करके शिक्षा गुरु के रूप में जैसे भी हो उनसे तत्व ज्ञान लाभ करके भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करना ही हमारा मूल उद्देश्य है, गुरु करना ही उद्देश्य नहीं है। गुरु किस लिए होगा, भगवान के तरफ में उसके चित्त वृत्ति को लगा दे। कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण तत्व का ज्ञान होने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, नित्य काल के लिए हम सुखी हो सकते हैं। ऐसा तत्व गुरु, ऐसा गुरु पाकर के यदि गुरु मिल गया, ऐसा तुमने गुरु किया, अब तुम्हारा गुरु शुद्ध है, उसकी अवज्ञा मत करो, भगवान जैसा ही उसको आदर।